तारापरी को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। अनायास ही उसकी नज़र मान पर पड़ी, जो गाड़ी के मिरर से उसे गहरी गहरी नज़रों से देख रहा था। अचानक मान से आंखें मिलने पर तारापरी ने अमन के सिर से अपना हाथ हटा लिया। उसी समय अमन ने अपनी आंखें खोल ली। तारापरी के उसे मालिश देते हुए उसकी आंखें आनंद के मारे अपने आप बंद हो गई थीं। अब तारा के हाथ हटाने पर अमन की आंखें खुल गई थीं। अमन ने देखा तारा कुछ थकी हुई सी लग रही थी। अमन ने वो तेल लिया और तारापरी के मना करने के बावजूद उसके सिर पर बड़े ही प्यार से मालिश करने लगा। तारापरी को काफ़ी ज़्यादा सुकून और राहत महसूस होने लगी। फिर वो जल्दी ही रमन के कंधे पर सिर रखकर उसकी गोद में सो गई। तारापरी को अमन के कंधे पर सिर रखकर सोता देख मान बेचैन हो उठा। उसने गाड़ी की स्पीड एकदम तेज़ कर दी। करिश्मा जी मान की स्पीड देखकर हैरान हुई। ये क्या कर रहे हो बेटा, थोड़ा धीरे चलाओ, वैसे भी अब ज़्यादा दूर नहीं है लोकेशन से, हम बस 20 मिनट में पहुँचने ही वाले हैं, करिश्मा जी ने कहा। 20 मिनट में उस जगह पहुँचने की बात सुनकर मान को थोड़ा रिलीफ मिला। उसके बाद तो अमन और तारापरी एक दूसरे से अलग हो ही जाएंगे। मान इन्हीं समूचों में गुम था कि अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। गाड़ी थोड़ी सी ढलान पर जाकर रुक गई। उसके बॉनेट से धुआं निकलने लगा। तभी अचानक लगे जोरदार झटके से तारापरी की नींद खुल गई। तारापरी का सिर सामने सीट पर लगने ही वाला था कि अमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। तारापरी को चोट नहीं लगी, लेकिन उसकी नींद खुल गई। तारापरी, अमन और करिश्मा गाड़ी से नीचे उतर गए। मान गुस्से से भिनभिनाता हुआ बाहर निकला। करिश्मा जी को देखकर उसने कहा, ये सब क्या है मॉम, आप हमें कहाँ लेकर आई हैं? रिलैक्स मान, टेक इट ईजी, इतना क्यों गर्म हो रहे हो, आखिर क्या हो गया है तुझे, अमन ने कहा। मान फिर से खिंचकर अलग खड़ा हो गया। अमन अपनी माँ के पास गया और कहा, मॉम आप ठीक तो हो ना, और ये कौन सी जगह है और हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा बस थोड़ी देर और तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा, करिश्मा जी ने कहा। ये कहकर करिश्मा जी तारापरी की ओर देखने लगी, जो गाड़ी रुकने पर आसपास की जगह को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित पूरी तरह से मलिका के हुस्न में डूबा हुआ था। मलिका ने अपने जिस्म का इस्तेमाल करके अमित को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। अमित दिन में एक सामान्य इंसान बनकर अमन के ऑफिस जाया करता था और रात होते ही वो वापस अपने खूंखार दरिंदे के रूप में लौट आया करता था। कितने सालों से अमित ये सब करता आया था। मलिका के उसकी जिंदगी में आ जाने के बाद अमित ने अमन के ऑफिस जाना बंद कर दिया था। मलिका ने अमित को मनाकर एक सुंदर लड़की के रूप में अमन के ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया था। अमित ने पहले तो मलिका को मना किया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मलिका ऑफिस में भी उसके साथ रहेगी तो वो आराम से मलिका के साथ दोपहर में एक बार इंटीमेट हो सकता था। उसे मलिका की बहुत बुरी लत लग चुकी थी, वो किसी भी जरूरी काम को किए बिना रह सकता था, लेकिन जब तक उसका जिस्म मलिका के जिस्म से कम 5 बार नहीं मिल लेता था, उसे चैन नहीं आता था। मलिका जान गई थी कि अब पासा पलट चुका था। अब मलिका अमित के कब्जे में नहीं, बल्कि अमित मलिका के कब्जे में था। हर रोज की तरह आज भी जब काली शक्तियों का मालिक अमित मलिका के जिस्म को निचोड़ रहा था, तभी एक पहरेदार ने दरवाजे के बाहर से ही बिच्छू के आने की खबर दी। अमित बिच्छू के आने की खबर से बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ये बिच्छू जरूर तारा को अपने साथ लाया होगा। भले ही अमित कितना ही मलिका के हुस्न में डूब जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में तारा के जिस्म को पाने का ख्याल आ ही जाता था। अमित मलिका को एक बार और सुख की चरम सीमा तक पहुंचाकर जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। मलिका उसी लाल कमरे के बाथरूम में बैठी हुई बाहर का नज़ारा अपने फ़ोन पर देख रही थी। मलिका ने अमित का पूरा महल CCTV कैमरों से भर दिया था, ताकि उसकी नज़र महल के हर कोने पर हो। सो मलिका बाथटब में बैठी हुई अमित और उस बिच्छू की मुलाकात देख रही थी। उस बिच्छू को खाली हाथ देखकर अमित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने कड़े कड़े शब्दों में पूछा, कहाँ है तारा, क्यों लेकर नहीं आया उसको? वो काली शक्तियों के मालिक, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी और मैं उसे लेकर आने ही वाला था कि तभी वो जिन लोग वहां आ गए थे और उन्होंने उस लड़की को मेरी पकड़ से छुड़ा लिया था और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहां आया हूं, वो बिच्छू थोड़ा डरते हुए बोला। अब अमित का गुस्सा और बढ़ गया और उसने एक झटके से उस बिच्छू का गला पकड़ लिया। वो बिच्छू छटपटाने लगा। ये देख मलिका जल्दी से एक हल्का सा कपड़ा अपने जिस्म पर डालकर वहां आ पहुंची। अमित को रोकते हुए बोली, रुक जाइए मेरे मालिक। ये सुनते ही अमित ने बिच्छू को दूर फेंक मारा और मलिका की ओर देखने लगा। मलिका के गीले बाल, ऊपर से वो बारीक सा कपड़ा और उसमें से नजर आता मलिका का हल्का हल्का जिस्म। अमित का गुस्सा एक मिनट में भुला गया और अमित का मन एक बार फिर मलिका के हुस्न में डूबने लगा। मलिका नज़ाकत से चलती हुई अमित के पास आई और उसके सीने पर हाथ रखती हुई बोली, मेरे मालिक, अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं इस बिच्छू को समझाऊं कि उसे किस तरह से काम करना चाहिए? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम समझा दो इसको, बस याद रहे मुझे काम पूरा चाहिए। अमन की शादी तारा से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और इस शादी को रोकने को लेकर जो भी प्लान है तुम्हारे पास, तुम उसे समझा सकती हो। और हाँ, जल्दी आना,
मेरा दिल एक बार और तुम्हारे जिस्म के हुस्न में डुबकी लगाना चाहता है, अमित ने बिच्छू को देखते हुए कहा। मलिका ने उसे मुस्कुरा कर देखा और फिर जल्दी ही अपना मुंह बना लिया। वो बिच्छू मलिका के सामने अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया और डरते डरते मलिका की ओर देख रहा था। उस वक्त उसे मलिका किसी जीती जागती कयामत से कुछ कम नहीं लग रही थी। वो मालकिन, हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो जिन महाराज बड़े ही शक्तिशाली हैं। उन्होंने उस इंसान लड़की को बचा लिया था। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोला, मुझे सब पता है, तुझे मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुझे बताती हूँ कि तू किस तरह से तारा की जान ले सकता है या फिर उसे अगवा कर सकता है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा कहकर पता नहीं मलिका कितनी देर तक उसके कानों में गुनगुनाती रही। फिर जल्दी ही उस बिच्छू के मुंह के भाव बदल गए और वो मलिका के आगे हाथ जोड़कर बोला, आपका ये एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा मालकिन। ऐसा कहकर वो वहां से निकल गया। मलिका मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखने लगी और बोली, अमन मेरी जान, बस कुछ दिन और फिर तुम्हें मेरे होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा कहकर वो एक शैतानी हंसी हंसने लगी। तभी उसे काली शक्तियों के मालिक अमित की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से अपने पतले से नाइटी की जिप खोलती हुई उसकी ओर चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर तारा परी उस जगह को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अचानक उसके जिस्म में एक बिजली सी कूंद थी। ये जगह तो वही थी जो उसने पिछले जन्म में देखी थी। इसका मतलब ये राधा का गांव था। अब तारा परी को सब कुछ समझ आ गया। वो समझ गई कि मोहन ने उसे उसके ही गांव में भेजा था। लेकिन ऐसा क्या था जो मोहन की आत्मा उसे यहां बुलाना चाहती थी? ये जानने के लिए वो जल्द से जल्द इस गांव के अंदर जाना चाहती थी। तभी अमन ने तारा परी की आंखों की चमक देखी। वो उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो रही हो? अमन सर, आप जरा ध्यान से अपने चारों ओर देखिए, मेरी खुशी का राज आपको पता चल जाएगा, तारा परी ने कहा।
अमन कन्फ्यूजन से तारा परी को देखता, कभी चारों तरफ देखता, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो तारा परी से पूछने ही वाला था कि यहाँ क्या है, तभी करिश्मा जी बोल पड़ी, बेटा मुझे लगता है इससे आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी, चलो एक काम करते हैं, यहाँ से हम तीनों पैदल ही चलते हैं। ठीक है मॉम, हम लोग चलते हैं, तारा परी ने कहा। लेकिन तभी मान एक बार फिर करिश्मा जी पर भिनभिनाता हुआ बोला, क्या मॉम, आपने सारा टाइम खराब कर दिया, हमें इस गांव में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि हम लोग घर चलकर अपनी शादी पूरी करते हैं। मान को एक एक मिनट भारी लग रहा था, वो तो बस जल्द से जल्द तारा परी से शादी करना चाहता था। लेकिन इस बार करिश्मा जी ने उसे झकझोर कर रख दिया और बोली, तुझे हो क्या गया है, क्या तूने बार बार शादी शादी लगा रखा है? मैंने कहा ना, जब तक मैं एक बार यहाँ इस गांव में नहीं पहुँच जाती तब तक तुम लोगों की शादी नहीं होगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और मान तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर तूने एक बार और बदतमीजी की तो मैं तुझे पूरे 3 महीनों के लिए पत्थर का बना दूंगी, समझा तू? अपनी माँ की कड़ी धमकी सुनकर मान एकदम से डर गया। उसने सोच लिया कि वो अब इन लोगों को कुछ नहीं कहेगा, कहीं गुस्से में आकर करिश्मा ने उसे पत्थर का बना दिया तो उसका सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये सोचकर मान सॉरी मॉम कहता हुआ एकदम से चुपचाप खड़ा हो गया। तभी अचानक